السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. ज़िंदगी में रमज़ान एक के बाद एक आ रहे हैं, और हर रमज़ान हमारे लिए दर्जों में, नेकी में, तक़वा में बढ़ाने का ज़रिया होना चाहिए, यानी हमें दीन में ऊपर से ऊपर ले जाने वाला होना चाहिए। बाज़ रमज़ान तो हमने अपनी ज़िंदगी के ऐसे गुज़ार दिए होंगे यकीनन, जिनमें हमें इतना शऊर नहीं था, समझ नहीं थी, बस जैसे तैसे करके रोज़े रख लिए, जो भी उनमें किया पता ही नहीं था तो गुज़र गए। लेकिन अब जब हमें शऊर आ गया, समझदार हो गए हैं, तो अब के रमज़ान वैसे नहीं होने चाहिए जैसे वो नासमझी के दौर के होते थे, जैसे बचपन के होते थे, या जैसे उस वक्त के होते थे जब हमें नॉलेज नहीं था। कुछ फ़र्क ज़रूर होना चाहिए। और हर साल जब भी रमज़ान आए तो ये ज़रूर सोचें कि पिछले रमज़ान से इस रमज़ान में क्या फ़र्क है, यानी ये रमज़ान मेरा पिछले वाले से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। ऐसे ही समझें जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, पहले इंसान एक सीढ़ी पे होता है, उससे फिर अगली पे चढ़ता है, फिर अगली पे चढ़ता है, इस तरह ऊपर चलता चला जाता है। इसी तरह रमज़ान हमें नेकियों में और अल्लाह ताला के नज़दीक हमारे दर्जात में बुलंदी का सबब बनना चाहिए। इसको सुस्ती का महीना ना बनाएं, सोने का महीना ना बनाएं, खाने पीने का और गपशप का महीना ना बनाएं, क्योंकि जब हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं तो बेज़ाहिर है हमारी नेकियों में कमी होती है और हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे बातचीत करने में। ज़रूर ये देखें कि ज़ुबान से कुछ ऐसी बातें ना निकलें कि जो हमारी ये ना हो कि हमारी नेकियों को खा जाने वाली हों या हमें नेकियों में पीछे कर देने वाली हों। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि जो रोज़ा रख के झूठ बोलना नहीं छोड़ता, फिर अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पता चलता है कि ज़ुबान की जो गुनाह हैं वो इंसान से रोज़े का अजर भी छीन लेते हैं, यानी रोज़ा फिर अल्लाह ताला के नज़दीक वो रोज़ा नहीं है, वो फाका है, अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल ना आया तो। रमज़ान में गुनाहों से बचने की शऊरी कोशिश हमने करनी है, और ये कोशिश करनी है कि ख़ास तौर पे वो गुनाह जो कि नेकियों का सफाया करने वाले हैं, या वो गुनाह जो कि इंसान के लिए कयामत के दिन ऐसे साबित हों जिनका डबल ट्रिपल गुना नुकसान हो जाए, यानी वो जिसको कहते हैं एक सदका जारिया नेकी का होता है, इसी तरह एक गुनाह जारिया भी होता है कि जब आप गुनाह करते हैं और फिर वो गुनाह इंसान दूसरे के लिए भी एक एग्जाम्पल बन जाए और दूसरे भी उसको देख के वो गुनाह करने लगे, तो वो भी फिर गुनाह उसका वबाल ज़्यादा हो जाता है। इस तरह बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जो कयामत के दिन हमें अपनी नेकियों में से बदले के तौर पे देने पड़ेंगे, तभी उनकी खलासी होगी। यानी जैसे इंसानों के साथ कोई ऐसे मामलात, किसी को गाली दे देना, गीबत कर देना, किसी को मारना, ये अब कयामत के दिन ऐसे होंगे कि अपनी नेकियों में से देना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे हम गुनाहों से बचें, और गुनाहों में भी ज़ुबान के गुनाहों से तो बहुत ज़्यादा बचें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गुनाह करती है ज़ुबान। तो रोज़ा रखने का तो मकसद ही कुरान में ये बयान किया गया कि तकवा हासिल हो जाए। अगर हम गुनाहों से ही ना बचे तो फिर इस ऐसे रोजे का क्या फायदा। तो आजकल जब हम गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें, तो जरूर अपने अंदर ये भी झांक के देखें कि मैंने कौन कौन से गुनाहों को छोड़ना है। वो चाहे जुबान के हैं, चाहे हाथों पैरों के हैं, चाहे वो आंखों के हैं, चाहे वो कानों के हैं। कौन सी ऐसी नाफरमानियां हैं जो मैं करती चली जा रही हूं और वो अब वक्त है कि मैं उनको छोड़ दूं। क्यों? इसलिए कि ये गुनाह ही तो हैं जिनकी वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है, गुनाह ही तो हैं जिनकी वजह से नेकियों की तौफीक छिन जाती, गुनाह ही तो हैं जिनकी वजह से नेकियों में दिल नहीं लगता फिर। और तौफीक छिन जाने की तो एक बात सुन लें कि सुफियान सौरी ताबेई फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक गुनाह की वजह से मुझे 5 महीने तक तहज्जुद नसीब नहीं हुई थी, और वो एक गुनाह ये था कि मैंने एक शख्स को रोते हुए देख लिया और मेरे दिल में यह ख्याल आया कि ये बड़ा ही रियाकार है। जैसे हम कहते हैं ना कि शोबाज है, शोख ये के लिए कर रहा है, ये बस दिखावा है इसका। कई दफ़ा हम तो मुंह से भी बोल देते, उन्होंने सिर्फ सोचा और देखें कहते हैं कि मुझसे तौफीक ही छिन गई। इसी तरह और भी कई गुनाह ऐसे हैं कि इंसान को उसके बाद दिल की सख्ती महसूस होने लगती है, आंखों से आंसू नहीं आते फिर, और दिल के अंदर कोई बात जाके लगती भी नहीं। ये सारे गुनाहों का ही नतीजा है। इसलिए गुनाहों को छोड़ने में जल्दी करनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि अच्छा मैं तब छोड़ दूंगी, मैं तब ऐसे कर लूंगी। अरबी की एक जरबुल मिसल है कि गुनाह दूध पीते बच्चे की तरह, जब माँ ने बच्चे का दूध छुड़ाना हो तो कैसे छुड़ाती है, एकदम छुड़ाती है ना। बच्चा चाहे रोता है धोता है, लेकिन अब माँ ने ठान ली है तो वो दूध नहीं पिलाएगी। लेकिन अगर माँ ऐसा करे कि कभी जरा बच्चे ने जिद की तो दे दिया, फिर एक दिन दो दिन छोड़ के फिर दो तीसरे दिन जिद करने पे आ गया तो तब दे दिया, तो क्या बच्चा कभी दूध छोड़ सकेगा? नहीं। इस तरह गुनाहों को कभी दिल किया तो कर लिया, अच्छा तो एक ही दफा कर लिया ना, तो क्या हो गया, ऐसे हो गया। अगर यही हम करते रहे तो फिर तो गुनाह छोड़ने बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए जरूरी है कि उसी वक्त छोड़ दिए जाए, फैसला कर लिया जाए और बस आज के बाद मैंने नहीं करनी। और इंसान के दिल में जरूर ख्याल आते ये ख्याल आता है कि पता नहीं फिर मैं तो शायद तौबा पे कायम भी ना रह सकूं, फिर क्या फायदा गुनाह को छोड़ने का, तौबा करने का, कोई फायदा तो है नहीं, मुझसे तो फिर हो ही जाना है। तो इसको एक मिसाल से समझें। आपके पास मसलन एक बड़ा कीमती डिनर सेट था, आपने अपनी नौकर से कहा कि ये सेट मुझे बहुत अजीज है, देखना इसको एहतियात से धोना, कहीं कोई प्लेट टूट ना जाए। अब एक तो ये हो सकता है कि आप देख रहे हैं वो बड़े एहतियात से धो रही है, मगर एहतियात के बावजूद एक प्लेट उसके हाथ से फिसलती है और टूट जाती है। अब आपको अफसोस तो होता है, मगर आगे से वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। तो आप कहते हैं अच्छा वाकई इसने कौन सा कोई जानबूझ के किया, आप उसको माफ़ कर देते, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ अगर ये होता कि आप देख रही हैं वो प्लेट उठाती है और पटक्के फेंक देती और फिर आपको कहती है बाजी अब माफ करते हैं, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? और अभी कोई दूसरी बात आपने की नहीं, साथ ही एक और प्लेट उठाती है और फिर पटक देती है और कहती है तो प्लेट ने तो टूटना ही था, अब कितना गुस्सा आएगा? आप बताएं दोनों में फर्क है या नहीं? तो कुछ यही हाल हमारा भी है। एक वो गुनाह है हम जानते बूझते करते चले जाते हैं, करते हैं, क्या फायदा है तौबा करने का, तौबा तो टूट ही जानी है, फलां वक्त में तौबा कर लूंगी, फलां वक्त में कर लूंगी, और टालते ही रहते हैं, टालते ही रहते हैं, और पता नहीं वो वक्त कभी आए भी या नहीं आए। क्योंकि जो लोग गुनाह करते रहते हैं और टालते जाते हैं कि बस कर लेंगे तौबा ना, अभी कौन सा कोई जाने का वक्त आ गया, अभी कौन सा मैं कोई बूढ़ी हो गई हूं कि अभी से तौबा करके बैठ जाऊं, हज पे जाएंगे तो तौबा कर लूंगी, फलां होगा तो तौबा कर लूंगी, तो जरूर ये बात सोच लें कि अगर ऐसे ही मौत आ गई तो जैसे सूरत निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया वलैसत तौबतु लिल्लदीन यामलून सय्याति हत्ता إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. उन लोगों के लिए कोई तौबा नहीं है जो गुनाह करते रहते हैं हत्ता के मौत आ जाती है, तो कहता है अब मैं तौबा करता हूं, इन्नी तुबतुल आन, अब मैं तौबा करता हूं। इनके लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया इसी आयत के एंड में कि उलाए का अदना लहुम अजाबन अलीमा, इनके लिए तो अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ये कोई अब तौबा? ये तो ऐसे ही है जैसे सारी जिंदगी कोई बंदा चोरियां करता रहे और एक दिन जब पुलिस उसके सामने आ जाए तो अब कहने लगे मैंने तौबा कर ली, तौबा कर ली, अब नहीं चोरी करूंगा। क्या उस सुना जाएगा ये? तो ये कोई तौबा नहीं होती। इंसान करता रहे बस ये सोचता रहे अच्छा एक दिन तो कर ही रहेंगे हम तौबा, तो एक दिन तो हम माफी मांग ही लेंगे, मैंने कौन सा सारी जिंदगी करना है। हाँ मैंने सोचा हुआ है मैं तौबा करनी है बस की नहीं जाती, क्या करूं। ये टाल मटोल, ऐसा ना हो कि मौत आ जाए। दूसरी तरफ अगर आज आप तौबा कर लेते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे हो जाए, तो देखिए गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता कि कितने दिन और जिंदगी बाकी है, तो फिर आज तौबा करें, गुनाह को छोड़ दें और इंसानी कमजोरी के नाते, इंसान है ना तो हो जाता है, कहीं जरूर फिसल जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम परफेक्ट रहे, हमसे कोई गुनाह ही ना हो। मगर अब अल्लाह ताला को पता है कि मेरा बंदा बचना चाहता है और इसकी नीयत भी है, मगर इससे गलती से ये काम हो गया, फिर वो माफ फरमा देता। तो लिहाजा ये चीज को सोचना चाहिए कि हम गुनाहों को कर भी रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं, क्या हमसे गुनाह हो जाता है गलती से, हमारी इंटेंशन भी नहीं थी, हमने माफी भी मांगी है लेकिन हम फिसल गए बस। कभी किसी मजलिस में बैठे हुए थे वहां पे बातें हो रही थी, हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया। कभी कहीं गए तो वहां पे माहौल ही ऐसा था तो वहां पे हमसे कोई गलती हो गई। कभी कोई ऐसा मौका आया, कभी ऐसी कोई जिंदगी में कोई ऐसी चीज आई कि फिसल गए, बस पता ही नहीं चला। इतनी ख्वाहिशात का ऐसा गलबा था कि समझ ही नहीं आई, बस कर बैठे कोई गलत काम, तो वो एक अलग चीज होती है। और एक सोचे समझे तौर पे करते रहना और यही सोचना हाँ कर लेंगे ना तौबा, हाँ कर लेंगे ना तौबा, ये जानबूझ के करना, इसकी फिर अगर मौत के बाद तौबा की भी तो वो कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचा के रखे। आज हम अल्लाह ताला के एक बड़े खूबसूरत नाम के ऊपर बात करने वाले हैं जिसमें बहुत ही जामियत है। ये नाम कुरान करीम में सिर्फ एक दफा आया और सूरतुल इखलास में आया, और अल्लाह ताला का ये नाम है अस्समद, सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, जिसको हम अपनी उसके अंदर जुबान में कह देते हैं बेनियाज। बेनियाज का मतलब ये नहीं कि उसको किसी की परवाह ही नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा वर्ड है कि मुस्तगनी, कि उसको किसी की जरूरत नहीं है। देखिए इंसान होने के नाते हमें हमेशा किसी ना किसी की जरूरत रहती है, हम बच्चे होते हैं तो वालदैन की जरूरत है, बड़े भी होते हैं तो साथी की जरूरत है, उसके बाद औलाद की जरूरत, फिर खाने पीने की जरूरत, फिर रहने सहने की ज़रूरत, फिर सेहत की ज़रूरत, फिर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, अपने प्यारे रिश्तों की ज़रूरत, दोस्त अहबाब की ज़रूरत। तो इंसान चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो या जवान हो, वो किसी ना किसी तौर पे दूसरों का ज़रूरतमंद रहता है, एक चीज़ में नहीं तो किसी और चीज़ में होगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और उसको किसी की भी ज़रूरत कभी ना हो। हम हमेशा दूसरों के ऊपर किसी एक चीज में वरना दूसरी में डिपेंडेंट होते हैं जिंदगी के हर फेस में। इस कायनात में सिर्फ एक जात ऐसी है जिसको किसी की जरूरत नहीं है, ना साथी की, ना दुख सुख करने वाले की, ना तन्हाई को मिटाने वाले की, अकेलेपन को दूर करने वाले की, ना किसी तरह से भी, किसी भी ऐसे रिश्ते की जरूरत नहीं जैसे हमें जरूरत होती है, और जैसे कि हम सोचते हैं कि इसके बगैर तो जिंदगी ही नहीं मुमकिन, ऐसी कोई एहतियाज उसको है ही नहीं। वरना ये कमजोरी हो जाती अगर वो मोहताज होता, चाहे मोहब्बत में ही किसी का मोहताज हो जाता तो ये कमजोरी हो जाती, और अल्लाह ताला हर कमजोरी से पाक है। लिहाजा उसको किसी फेज में भी, किसी चीज में भी, किसी की भी जरूरत नहीं। ना उसको फरिश्तों की जरूरत है, ना उसको अर्श के उठाने वालों की जरूरत है, ना उसको अर्श, अर्श जो अल्लाह ताला की सबसे अजीम मखलूक है, सबसे बड़ी मखलूक और सबसे खूबसूरत मखलूक, ये ना सोचें कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर बैठा है। हम कहते हैं मुस्तवी है, बस इतना ही काफी। हमें नहीं पता कैफियत क्या है, हम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला अर्श पे है, उसको ऐसा नहीं कि अर्श की जरूरत है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, ये ना सोचे। ऐसी सोच लाना भी, ऐसा गुमान करना भी सही नहीं है। और ना ही उसको जिन्नात की, ना ही उसको इंसानों की, ना उसको इस जमीन आसमान की, इस कायनात किसी चीज की भी जरूरत नहीं, और ना ही उसको किसी की भी इबादत की जरूरत है कि इंसान उसकी इबादत करें या फरिश्ते चलो उसकी इबादत करते रहें, चलो इंसान ना सही फरिश्ते ही करते रहें इबादत, नहीं। असमद, असमद एक तो ये माना आपने समझा, वो जिसको किसी की इहतियाज नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज में भी, ना अपने काम बनाने में, ना अपने आप को कायम रखने में, ना अपनी कोई और चीजें करने में। एक ये माना। दूसरा इसका माना है वो जो अंदर से खोखला ना हो, जिसका पेट ना हो, खला ना हो जिसके अंदर, जौफ कहते हैं पेट को। तो जब जौफ होता है ना पेट, आपको पता है ये पेट की जरूरत हर एक जानदार के साथ लगी हुई है, और जब पेट होता है साथ तो फिर खाने की भी जरूरत होती है। इस खला को पुर करना है ना किसी चीज से, तो हम अंदर से खोखले। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। आप देखिए जिस वक्त मजमूआ जवाइद में ये रिवायत आती है कि अल्लाह ताला ने जब आदम का पुतला पैदा किया था, तो इबलीस उस वक्त चूंकि मलाइका के साथ रहता था, उसको बड़ा तजस्सुस हुआ कि ये क्या चीज बनी है। तो वो आया और आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के चारों तरफ घूम के देखता रहा कि ये क्या चीज है, फिर छू के देखा और छूते हुए पेट पे उसका हाथ पड़ गया, उसको दबाया तो वो दब गया, यानी ये पेट था ना जौफ। तो बोला ये अगर सबसे ज्यादा गुमराह होगा और अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार होगा तो इस पेट की वजह से होगा, क्योंकि तो इंसान इस पेट को भरने के लिए बहुत सारे गुनाह करता है ना। कहते हैं ना पेट के लिए ही तो कमाते हैं, पेट के लिए ही तो खाते हैं, पेट के लिए तो कितने सारे गुनाह कमाने में इंसान कर जाता है। इसी कमाइयों के पीछे झूठ है, धोखा है, फरेब है, बेईमानी है, मिलावट है, सूद है, बहुत सारी कबाहतें हैं, और झूठ सबसे बड़ा वो है चीज। तो दूसरा आपने ये माना समझा, फिर तीसरा माना असमद का है हर चीज का बुलंद हिस्सा, वो जिससे बालातर कोई भी नहीं है, नहीं वो इतना बुलंद कि जिससे ऊपर कोई चीज ना हो, वो है असमद। फिर इब्ने अब्बास का कौल है कि असमद वो है जिसकी तरफ लोग किसी बला या मुसीबत के नाजिल होने पर मदद के लिए रुजू करें, यानी मदद भी वो ही देता है। फिर वो सरदार जो अपने शर्फ में, अपनी अजमत में, अपने हिल्म में, बुर्दबारी में, अपने इल्म में, अपनी हिकमत में कामिल हो। तो इसका एक मतलब ये भी है कि जो कामिल हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब क्या, यानी परफेक्ट किसी एक चीज में नहीं, अपनी हर सिफत में वो परफेक्ट है। और यहां से फिर असमद जो है अल्लाह ताला की जितनी सिफात है ना उन सब के लिए ये नाम आ जाता है कि अल्लाह ताला हर अपनी सिफत के अंदर परफेक्ट कामिल है, यानी वो अपने इल्म में कामिल, वो अपने रहम में कामिल, वो अपने तखलीक में कामिल, वो अपने बाखबर होने में कामिल, वो अपनी तमाम सिफात में, जितने भी अस्माउ सिफात आप पढ़ चुके हैं, आप हिकमत में, अपने मोहब्बत में, वो अपनी समात समी असमी से अपनी समात में कामिल, वो अपनी बसारत में कामिल। तो हर एक चीज़ इसके साथ हर एक सिफत लग जाती है कि जब वो असमद है कि वो परफेक्ट है, तो हर नाम को इसने अपने अंदर समो लिया। अब मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला अपनी रहमत में कैसे कामिल है, हम माँ की मिसाल देते हैं, लेकिन ये मिसाल भी नहीं दी जा सकती क्योंकि अल्लाह ताला तो कमाल पे है। माँ तो कभी बच्चे को दुत्कार भी सकती है, कभी कहती है मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी, कभी कुछ कहती। अल्लाह ताला की रहमत ऐसी है कि उसके कंपेरेबल कोई चीज़ नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुसलमानों का खुदा तो बहुत गुस्से वाला है और सज़ाएं देने वाला है और ऐसा है, जबकि वो तो अरहमुर्राहिमीन है, वो रहम में भी परफेक्ट है, तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। इंसान तो सोचता है कि मुझे किसी के ऊपर तरस आ जाता है, रहम आ जाता है, तो आपको जो रहम मिला हुआ है ना, जिसकी बेस के ऊपर आप अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि उसने फलां के ऊपर रहम क्यों नहीं किया, उसने फलां को ये क्यों नहीं दे दिया, आपके दिल में रहम आता है इसलिए, या उसके ऐसे हालात क्यों कर दिए, या उसके ऊपर गम का पहाड़ क्यों तोड़ दिया, तो आपके दिल में जो रहम आ रहा है, हमेशा सोचा करें अल्लाह ताला तो अर्रहमान है, जो परफेक्ट है, मुझे जो रहम मिला हुआ वो तो उसकी रहमत के 100वें हिस्से में, 99 रहमतें उसके पास हैं, जो 100वां हिस्सा है उसका भी एक कतरा मुझे मिला है, तो फिर मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ताला अपनी जात में भी कामिल परफेक्ट, सिफात में भी कामिल, जैसे मैंने आपको ये तमाम सिफात का आप इसी तरह सोच लें, जितने भी अस्माउ सिफात हैं उनको रख लें और उसके अंदर ये सोचें कि वो उनमें परफेक्ट है, और फिर अपने अफ़आल में भी कामिल, यानी जो भी वो करता है उसमें भी कमाल पे है। फिर असमत का एक माना ये भी है जिसमें कोई आफत नहीं आती, और एक माना है जो बेऐब है, जिसमें कोई ऐब नहीं, जिसके ऊपर कोई आफत नहीं आती, यानी को इससे वो बरी है और कोई नहीं कह सकता दुनिया में कि उसके ऊपर कभी कोई आफत नहीं आती। ये अल्लाह ताला की जात ही है जो इतने कमाल वाली है। फिर एक माना है जो बाकी रहने वाला है और लाजवाल है, उसको कोई जवाल नहीं है। और फिर उलमा ने ये भी फरमाया कि सूरह इखलास के अंदर जो आता है ना, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो ये जो आगे लम यलिद वलम यूलद, इससे आगे ये है असमद, ये असमद की ही तशरीह है कि वो जो किसी से पैदा नहीं हुआ और उससे कोई पैदा नहीं हुआ, कोई चीज उससे खारिज नहीं होती और कोई चीज उसके अंदर दाखिल नहीं होती, यानी वो खाना और पीना इससे पाक है, पेट ही नहीं तो खाना पीने की क्या बात है, जो पेट वाले हैं वही खाते पीते हैं ना, तो जब पेट नहीं तो ना खाने पीने की मोहताजी, और जो खाती पीती मखलूक है फिर वो निकालती भी है, तो ऐसी भी कोई चीज उसके साथ नहीं, वो इससे भी पाक है। तो और बीमारियां वो भी पेट की अक्सर होती हैं, पेट में होती हैं, पेट की जगह पे होती हैं, तो आप देखिए कि वो इन सारी कमजोरियों से पाक। तो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुरैश ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि अपने रब का शजरा नसब बताएं, लीनियज बताएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास ही पढ़ी थी, और ये इतनी अजीम सूरह है कि इसी सूरत के बारे में आता है कि एक सहाबी सूरह रहमान को पढ़ा करते थे हर रकत में,
हर रकत में सॉरी सूरह इखलास को हर रकत में पढ़ा करते थे। यानी जब भी कोई भी तिलावत करनी होती तो उसमें सूरह इखलास को पढ़ते एंड में, और उससे पहले जो भी पढ़ना होता। तो लोगों ने इस पे एतराज किया और उनसे पूछा कि आप ये क्यों पढ़ते हैं, हर दफा लाजमी है क्या, जरूरी है कि हर दफा आप ये भी पढ़ें? तो फरमाया उन सहाबी ने कि ये सूरत जो है रहमान की सिफत है, मुझे इसका पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें अल्लाह ताला की सिफात बयान की गई है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको खबर दे दो कि अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत रखता है, क्योंकि उनको इस सूरत से मोहब्बत है, अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत रखता है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आता है कि एक और सहाबी थे, इसी तरह वो भी पढ़ा करते थे, हर रकत के अंदर ये सूरत पढ़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है, तो आपने फरमाया इसकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगी, या इसकी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में पहुंचा दिया। तो ये वो सूरत है जिससे हमें सबको मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि इसकी मोहब्बत हमें भी जन्नत तक पहुंचा सकती है, और इसकी मोहब्बत हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत दिला सकती है। और ये तभी होगा जब हम इस सूरत को समझेंगे, और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो यही अल्लाहुस्समद है, कि अल्लाह ही अस्समद है। अगर अस्समद की समझ नहीं आई तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये तो जानना आसान है, लेकिन अस्समद में कितना सारा माना है, ये सारे माने आप जमा करें तो आपको पता चले अस्समद कौन सी जात है, और वो जात कितनी कामिल है, कितनी परफेक्ट है वो जात, कि उसके हर काम परफेक्ट है, हर चीज परफेक्ट है उसकी। अल्लाह अकबर। और फिर हम इस सूरत को ही देखें तो हम भी कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास आए और फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने 1/3 कुरान की तिलावत करूंगा, और सूरह इखलास पढ़ी। तो सहाबा इंतजार में थे, उन्होंने पूछा, आपने फरमाया यही एक तहाई कुरान के बराबर है। और देख लें आप 3 दफा इस सूरत को आप पढ़ें तो आपको इतना सवाब मिलेगा, यानी सवाब के एतबार से, ये नहीं कि आप कुरान पढ़ना छोड़ दें और कहेंगे बस हम 3 दफा यही पढ़ लिया करेंगे, नहीं, सवाब के एतबार से ये सूरत इतनी ग्रेट सूरत है। तो एक तो ये हमें मौका पता चलता है, इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि हम इस सूरत को हर दिन कम अज कम 10 दफा पढ़ लिया करें। जो शख्स इस सूरत को 10 दफा पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर करेगा। और मैंने करके भी देखा, 1 मिनट और तकरीबन 8 सेकेंड मुझे लगे, यानी 1 मिनट ही कह दें, और बहुत आराम आराम से पढ़ने में 10 दफा, क्योंकि ये सूरत हमारी जुबानों पर बहुत आसानी से आ जाती है, जारी है हमारी जुबानों पर, तो जरा भी तकलीफ भी नहीं होती कि पढ़ने में कोई मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी हो रही है। तो लिहाजा इस सूरत को अगर हम 10 दफा कम अज कम रमजान में कोशिश करें कि हम 10 दफा पढ़ा करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 काम ऐसे हैं जो इनको ईमान के साथ कर ले वो जन्नत के तमाम दरवाजों में से जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए, और जिस किसी हूर से जन्नत में चाहे निकाह करा दिया जाएगा। अब उनमें एक काम ये भी है कि हर फर्ज नमाज के बाद 10 दफा ये पढ़ी जाए। एक तो मैंने आपको कहा ना कि वैसे आप पूरे दिन में 10 दफा पढ़ लेंगे तो आपको जन्नत में एक महल मिलेगा, और अगर आप हर फर्ज नमाज के बाद 10 दफा पढ़ लेंगे तो आप खुद सोचें जन्नत के जिस दरवाजे से चाहें दाखिल हो जाएं। अल्लाह अकबर। अब ये जो महल वाली बात भी है, अब आप कहेंगे हम तो रोज ही पढ़ लिया करेंगे तो क्या हमें रोज महल मिल जाएंगे? हजरत उमर ने ऐसा ही सवाल कर लिया था, या रसूलल्लाह पे तो हम बहुत सारे महल बनवा लेंगे कि हम बहुत सारी दफा 10 10 दफा पढ़ते रहेंगे। जब भी 10 दफा पढ़ेंगे एक महल बन जाए। तो आपने फरमाया अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा और इससे भी अच्छा देने वाला है। अल्लाह ताला के हाथ कोई कमी थोड़ी है, उसके ही सारे खजाने, जितने मर्जी चाहे महल अता फरमा दे। और वैसे भी हमें इसको पढ़ना चाहिए, वैसे तो जब हम फजर के बाद अपने सुबह के अज़कार करते हैं तो उसमें 3 दफ़ा पढ़ लें, और पढ़ना सुन्नत भी है, और शाम को यानी असर के बाद जो अज़कार शाम के करते हैं उसमें भी 3 दफ़ा पढ़ना है, तो 3 3 दफ़ा तो यही हो गया, 6 दफ़ा तो हमारा दिन में हो ही जाता है। फिर सोते वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रुकिया किया करते थे, जो अपने ऊपर खुद ही ये रुकिया, खुद ही ये दम करते थे, और वो क्या है, आप एक दफ़ा सूरह इखलास, एक दफ़ा सूरह फलक और एक दफ़ा सूरह नास पढ़ें, और अपने हाथों पे फूंक मारें, और फिर सर से लेके जहां तक आगे आपकी बॉडी तक हाथ पहुंच जाए वहां तक आप अपना हाथ फेर लें। फिर सेकेंड टाइम फिर इसी तरह करें, इखलास फलक और नास पढ़ के फूंके और अपने पूरे जिस्म पे फेरें। फिर थर्ड टाइम भी ऐसे करें, 3 दफ़ा इसमें हो गया। तो 3 दफ़ा सुबह के अस्कार में, 3 दफ़ा शाम के अस्कार में, 3 दफ़ा सोने से पहले आपकी ये सूरत हो गई। अब रह गई 1 दफ़ा, अब 1 दफ़ा किसी नमाज में भी पढ़ लेंगे, बल्कि जो सुन्नत है वो यही है कि फजर की जो आप 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, तो पहली रकत के अंदर आप सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ा करते थे, ये आपकी सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और आपके 10 दफ़ा का भी अदद पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से करके इसी तरह वितरों में भी पढ़ा करते थे, तो आप दिन में कई दफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन चाहें तो एक ही दफ़ा आप 10 मरतबा बैठ के पढ़ लें और आप क्या एक महल तामीर हो जाएगा। जो जिस चीज जितना करना चाहता है, जिसको जितनी ख्वाहिश है पाने की, उसी के मुताबिक उसको मिलेगा। तो ये सूरत ऐसी है, और कि इसके फजाइल बहुत ज्यादा हैं, कुरान पढ़ने का भी अजर मिल गया आपको, तो इतना कुछ इससे मिलने वाला है। और हमारे लिए अमल के लिए ये है कि हम इस नाम को जो इस सूरत में आया है, इसके जरिए अल्लाह ताला को पुकारे, क्योंकि वो असमद है, वो ही है जो कि सबकी जरूरियात पूरी करता है, लेकिन उसको किसी की भी जरूरत नहीं, ना हमारी हमदो सना की, ना हमारे रोजों की, ना हमारे कुरान पढ़ने की, ना हमारी नमाजों की, किसी चीज की भी जरूरत नहीं। उसकी बादशाहत में कोई फर्क नहीं आता हम करें या ना करें। अब कुछ लोग कहते हैं फर्क ही नहीं आता तो हमें करने की क्या जरूरत, करने की जरूरत हमें अपने लिए है। क्या हमें शर्म नहीं आती कि हम जिसका खा रहे हैं, जिसका पी रहे हैं, जिसने हमें पैदा किया है, हम उसकी बड़ाई बयान ना करें। एक कोई भी शरीफ नफ्स इंसान जो होता है, उसके ऊपर किसी का एहसान हो तो वो शुक्रिया कम से कम जरूर कहता है, चाहे वो एहसान का बदला ना भी उतार सके। लेकिन इंसान की कितना नाशुक्रापन है कि अगर वो खाए पिए उस रब का दिया हुआ और हर चीज इस्तेमाल कर रहा है, हत्ता कि सांस भी उस रब की दी हुई उससे जिंदा है, और फिर वो इतना नहीं करता कि उसके आगे सर को झुका दे, नमाज पढ़ ले, उसके कहने के मुताबिक चल ले। तो ये तो हमारी अपनी चीज है कि हमें अपने लिए हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला को इसने हम कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे, तो अल्लाह ताला के इस नाम से उसको पुकारे और उसी ने देना है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, वो जो सबकी जरूरियात पूरी करता है, लेकिन उसको किसी की जरूरत नहीं, सब उसकी तरफ रुजू करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी तरफ अपनी जरूरियात के लिए रुजू ना करें और किसी और की तरफ कर रहे हैं, तो हमने फिर उसको अल्लाह ताला को तो असमत नहीं मानना ना, तो हमने तो किसी और को मान लिया, हमने कहा या हुसैन मदद, आप तो मदद हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से मांग रहे हैं, या अली मदद, और हुसैन ही सलामत रखने वाले, तो फिर तो हमने उनको समझ लिया ना। तो असमत तो वो है कि सबकी जरूरियात वो पूरी करने वाला है, सबकी एहतियाज, जो भी मोहताजी है इंसान की, वो उस मोहताजी को वो दूर करने वाला है, सब उसकी तरफ रुजू करते हैं मदद के लिए। और सारी सरदारी जिस पे जाके खत्म हो जाती है, तो फिर बताएं कि मखलूक में से कौन हो सकता है जो ये काम कर सके। तो लिहाजा हमें किसी और को ये नहीं समझना चाहिए। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे, तो हज पे जब वो गया और तवाफ करने लगा तो देखा सालिम जो हजरत उमर के पोते हैं वो बैठे दुआएं कर रहे हैं। बड़े फुकहा में से थे मदीना के, तो सुलेमान पास गया उनके और पूछने लगा मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। सालिम फरमाते हैं मुझे हया आती है कि मैं जिसके घर के सामने बैठा हूँ उसको छोड़ के किसी और से मांगना शुरू कर दूँ। जब वहां से निकले मस्जिद से, तो सुलेमान ने फिर सवाल किया कि अब तो हम बाहर आ गए हैं, आप मुझे बता दें आपको कुछ चाहिए। सालिम कहने लगे अमीरुल मोमिनीन दुनिया का दे सकते हैं कि आखरत का? तो खलीफा ने कहा जाहिर है दुनिया का ही दे सकता हूँ, आखरत का तो मेरे हाथ में नहीं। सालिम ने कहा मैंने दुनिया तो कभी उससे भी नहीं मांगी जो इस दुनिया का मालिक है, तो आपसे क्या मांगूंगा जबकि आप तो दुनिया के मालिक भी नहीं। सुभान अल्लाह, ऐसी तौहीद होती थी उनकी। और हम कभी इससे मांगना कभी उससे मांगना, फलां हमारा ये करेगा फलां, ठीक है जो इंसानी कुदरत के अंदर है काम वो आप किसी को मदद के लिए कह सकते, लेकिन जो इंसान की कुदरत से बाहर है यानी इंसान के बस में नहीं है, आप उसको समझते हैं कि इसके बस में है वो उनके बस में नहीं है, यानी सुपर नेचुरल तरीके से कोई आपके काम कर देगा, तो यही है वो चीज कि जिसमें शिरक आ जाता है, इससे बचें। और फिर एक आपको दिलचस्प दुआ बताना चाहती हूँ, और या इसको जिक्र कह लें, बल्कि जिक्र कहना ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि इसके बाद, इस जिक्र के बाद दुआ मांगी जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को ये कहते हुए सुना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्नक अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहद समद अल्लजी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं इसलिए इस बिना पे कि मैं शहादत देता हूं कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, यानी किस चीज के वास्ते से सवाल किया, किस चीज को वसीला बनाया। हम सोचते ना वसीला बनाए, क्या वसीला बनाए, तो हम अपनी तरफ से इधर उधर से वसीले बना रहे होते, हालांकि देखें इन दुआओं के अंदर हमें बता दिया गया आपने किस चीज को वसीला बनाना, अपने अकीदे को, अपने अकीदे को, जैसे आप अपने नेक अमल को वसीला बना सकते हैं, इस तरह अपने अकीदा तौहीद को भी, कि ऐ अल्लाह मैं ये गवाही देता हूं कि तू ही है अल्लाह, तू वाहद है और तू समद है, और ना तेरी कोई औलाद, ना तूने किसी को जना, ना तुझसे कोई पैदा हुआ, और तेरा मिसल कोई भी नहीं है, तेरा शरीक कोई भी नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि ये शख्स ये कह रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने ऐसी बात कही है, इसने ऐसी बात, ऐसा सवाल किया है अल्लाह ताला के उस नाम से कि जिसके बाद जो मांगा जाए वो पूरा होगा और जो दुआ की जाए वो कबूल होगी, यानी ये कलिमात कहने के बाद जो दुआ भी करेगा ये वो कबूल होगी। एक रिवायत में आता है एक आदमी ने कहा इन कलिमात के बाद अंतगफिर ली कि तू मुझे बख्श दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाया इसकी बख्शिश हो गई, इसकी बख्शिश हो गई, इसकी बख्शिश हो गई, क्योंकि ये वो कलिमात हैं, ये वो जिक्र है जिसके बाद दुआ कबूल होती है। अब आपका दिल चाहे तो आप भी कह दें इसके बाद कि अल्लाह मुझे बख्श दे, या आपका जी चाहे तो आप कोई और बात कह दें, कोई और चीज का सवाल कर लें। जितने हमारी तो हाजतें इतनी ज्यादा हैं, हम इतने ज्यादा मोहताज हैं अल्लाह ताला के, बहुत सारी हमारी दुआएं हैं, हमें असल में दुआओं को मांगने का ढंग नहीं आता। तो देखें इस जिक्र के अंदर आप देख लें कि अल्लाह ताला का नाम असमद है, ठीक है, और इस जिक्र के बाद दुआ कबूल होती है। अब इसी में कोई इस्म आजम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद जो भी दुआ ये मांगेगा, जो सवाल करेगा वो पूरा हो जाएगा। तो इस अकीदे के साथ, इस यकीन के साथ आप इस जिक्र को करें और इसके बाद आप दुआ भी मांगे। और आज की दुआ ये है कि हम इस दुआ को देखते हैं सूरह कसस में, जो मूसा अलैहि सलाम ने मांगी थी, रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ए अल्लाह, जो भी तू भलाई मेरी तरफ नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। तो मूसा अलैहि सलाम जिस वक़्त मिस्र से भाग निकले थे गिरफ्तारी के खौफ से, तो मदियन जब पहुंचे और कुछ भी उनके पास नहीं था, तो उस वक़्त ये दुआ की थी और अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमा लिया था और उनकी मोहताजी दूर फरमा दी। ना उनके पास उस वक़्त कोई घर बार था, ना रिस्क था, ना कोई जॉब थी, ना फैमिली थी, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला ने सारा कुछ ही दे दिया उसी वक्त ही, कि उस वक्त घर भी मिल गया उनको, खाना भी मिल गया उनको, बीवी भी मिल गई उनको और जॉब भी मिल गई उनको। तो ये बहुत ही जामे दुआ है। और उलमा कहते हैं इसके बाद ही जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से निकले थे, तो अल्लाह ताला ने फिर नबुवत भी उनको दे दी थी, जो कि बहुत बड़ी खैर है। तो अपने आप को मोहताज जाहिर करें अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह मैं मोहताज हूँ और मुझे ज़रूरत है, और अब जो भी तू मेरी तरफ नाजिल करे मैं उसके लिए फकीर हूँ। तो अल्लाह ताला के आगे इस तरह का इजहार करना चाहिए अपनी मोहताजी का। और फिर देखें उन्होंने एक नेकी की थी, उसके बाद ये दुआ मांगी थी। तो हाँ, यानी उन्होंने लड़कियों की बकरियों को पानी पिलाया था बगैर किसी यानी ऐसी नीयत के कि इसके बाद मुझे कुछ मिलेगा। वो तो जाके आराम से वहां बैठ के ना उनसे कोई पैसा मांगा, ना उनसे ये कहा कि इसके बाद तुम हमारे लिए मेरे लिए क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, बल्कि बेलॉस होके एक नेकी की और उसके बाद दुआ मांगी। तो उलमा कहते हैं इसलिए भी दुआ कबूली। और एक तीसरी वजह भी उलमा बताते हैं कि ये दुआ उन्होंने उस सूरत में मांगी थी जिस वक्त वो मुसाफिर थे, तो मुसाफिर की भी दुआ कबूल होती है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें कबूलियत वाली आपको हासिल हो सके, मिसाल के तौर पे आप दुआ मांग रहे हैं उस वक्त बारिश भी हो रही है, तो आपकी दुआ की कबूलियत का ज़्यादा चांस है। और उस वक्त रात एक तहाई रात का टाइम भी है, जो लास्ट 1/3 नाइट, जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि कोई है जो मुझसे मांगे तो मैं उसको अता करूं, तो अगर वो टाइम है तो उसमें और ज़्यादा आपकी दुआ की कबूलियत का चांस है। तो यानी डिफरेंट चीज़ें जब मिल जाती हैं तो दुआ की कबूलियत की जो यानी बताई गई है हमें सुन्नत से, वो जितनी ज़्यादा आपको मिल जाए उतना ही आपकी दुआ की कबूलियत का ज़्यादा चांस है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम उससे तौहीद के साथ, पूरे यकीन के साथ उसके आगे झुकें और उससे दुआएं करें, और हमारे अकीदे में ज़रा भी कहीं शिर्क ना हो। अल्लाह ताला हमें शिर्क से महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।